एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही असाधारण किताब और उसकी लेखिका की कहानी पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है द चॉइस, एम्ब्रेस द पॉसिबल। ये 2017 में आई थी और लेखिका हैं डॉक्टर एडिथ ईवा ईगर। ये कोई मामूली किताब नहीं है ना?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर की आपबीती तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। इसमें मनोविज्ञान की गहरी बातें हैं और कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात से उभरा जाए उसकी एक कह सकते हैं राह दिखाती है। डॉक्टर ईगर की कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, आज भी लचीलापन, कैसे हम चुनते हैं और उम्मीद, इन सबके लिए एक मिसाल है। वो 1927 में पैदा हुई थी और अच्छी बात यह है कि आज भी सक्रिय है।
और उनकी कहानी का एक सिरा सीधे 20वीं सदी के सबसे काले अध्यायों में से एक, ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप से जुड़ता है। सिर्फ 16 साल की थी वो जब वहां के कुख्यात डॉक्टर जोसेफ मेंगले के सामने उन्हें नाचने पर मजबूर किया गया।
हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन यही अनुभव, यही भयानक पल आगे चलकर उनके पूरे जीवन के दर्शन का, उनके फिलॉसफी का आधार बना। तो ये कहानी सिर्फ दुख और दर्द की नहीं है, बल्कि उस दर्द से निकले ज्ञान और कह सकते हैं एक तरह की आजादी की है।
सही कहा, ये इंसान के अंदर की जो हिम्मत होती है उसकी कहानी है। दिखाती है कि कैसे बिल्कुल अंधेरे में भी इंसान अपने अंदर एक रोशनी ढूंढ सकता है। तो चलिए उनकी जिंदगी के इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, शुरू से।
जरूर। डॉक्टर ईगर का जन्म हुआ था 1927 में कोशिश शहर में, जो उस वक्त चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। एक सामान्य सा यहूदी परिवार था। पिता लाजोस, वो दर्जी थे, माँ इलोना सिविल सेवक थी, काफी प्रैक्टिकल किस्म की, और दो बहनें थीं मैग्डा और क्लारा।
और एडिथ के अपने सपने थे बचपन में?
हाँ बिल्कुल, उन्हें बैले और जिम्नास्टिक का बहुत शौक था, जुनून कह लीजिए। सपना था कि ओलंपिक में हंगरी के लिए खेले, मेडल जीते।
लेकिन माहौल बदल रहा था।
बिल्कुल, यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत, एंटी सेमिटिज्म बढ़ रहा था, और इसी वजह से उन्हें ओलंपिक की ट्रेनिंग टीम से निकाल दिया गया। आप सोचिए, एक युवा लड़की के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। बाहरी दुनिया की जो क्रूरता थी उसने उनके सपनों पर जैसे पहला हमला किया।
और शायद यहीं पर उनकी माँ की वो बात जो आपने बताई उनके जहन में गहरे उतर गई होगी।
हाँ, कि कोई तुमसे वो नहीं छीन सकता जो तुम अपने दिमाग में रखते हो। और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, आगे जो भयानक वक्त आने वाला था उसमें ये उनके लिए एक लाइफ जैकेट जैसे साबित हुए। क्योंकि 1944 में जब वो सिर्फ 16 की थीं, उनके पूरे परिवार को पहले घेट्टों में डाला गया और फिर सीधे ऑशविट्स भेज दिया गया। नरक का दरवाजा खुल गया था।
ऑशविट्स पहुंचते ही सब बिखर गया। डॉक्टर मेंगेले का वो सिलेक्शन, उनके माँ बाप को अलग कर दिया गया।
हाँ, और माँ को तो सीधे गैस चेम्बर भेज दिया गया। एडिथ ने अपनी माँ को आखिरी बार वहीं देखा। इस सब कुछ ही घंटों में हो गया,
कल्पना से परे है।
और उसी दिन माँ की मौत का सदमा भी ताजा ही था, शायद कुछ घंटे ही हुए होंगे कि मेंगेले ने एडिथ को हुक्म दिया कि वो उसके मनोरंजन के लिए नाचे।
ओह,
आप सोचिए उस लड़की की हालत, डर, सदमा, बेबसी। लेकिन उस भयानक पल में उन्हें अपनी माँ के वो शब्द याद आए, जो तुम्हारे दिमाग में है उसे कोई नहीं छीन सकता।
हाँ।
उन्होंने आंखें बंद की और उन्होंने कल्पना की वो ऑशविट्स में नहीं, बुडापेस्ट ओपेरा हाउस के मंच पर हैं, संगीत बज रहा है और वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। बाहर से वो कैदी थीं, पर उस एक पल के लिए अपने मन के अंदर उन्होंने आज़ादी महसूस की। ये उनकी चुनाव की शक्ति का पहला एहसास था।
और इस नाच के बदले मेंगेले ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा दिया था इनाम में।
हाँ, और उन्होंने वो टुकड़ा अकेले नहीं खाया, उन्होंने उसे अपने भूखे साथियों के साथ बांटा। उस नफरत और मौत के माहौल में ये इंसानियत की एक छोटी सी पर बहुत बड़ी निशानी थी।
इसके बाद का एक साल तो भयानक रहा होगा।
अकल्पनीय। एडिथ और उनकी बहन मैग्डा के लिए वो साल भूख, बीमारी, बे इंतहा क्रूरता और मेहनत से भरा था। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनी रहीं, एक दूसरे को जिंदा रखा।
और फिर आई आजादी, मई 1945।
हाँ, मई 1945 में अमेरिकी सैनिकों ने ऑस्ट्रिया के गुंसकिर्चन लेगर कैंप को आजाद कराया। लेकिन तब तक एडिथ की हालत बहुत खराब थी, वो लगभग मर चुकी थी। सैनिकों को वो लाशों के ढेर में मिली।
लाशों के ढेर में?
हाँ, बस एक सैनिक ने उनके हाथ में हल्की सी हरकत देखी और उन्हें वहां से निकाल लिया। ये सचमुच मौत के मुंह से वापसी थी।
अविश्वसनीय। और युद्ध के बाद क्या हुआ?
उन्हें पता चला कि उनकी एक और बहन क्लारा, जो वायलिन बजाती थी, वो भी बच गई हैं। फिर उनकी मुलाकात हुई बेला इगर से, वो भी हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। दोनों ने शादी कर ली, उनकी बेटी मैरियन पैदा हुई। लेकिन तब यूरोप में एक और खतरा था, साम्यवाद का। तो 1949 में ये परिवार एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका चला गया।
अमेरिका, नई जमीन, नई शुरुआत, आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं। पहले बाल्टीमोर, फिर एल पासो टेक्सास में बसे। एडिथ ने एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन ऑशविट्ज़ की यादें, वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रात को डरावने सपने आते थे और दिन में एक अजीब सा अपराध बोध।
सर्वाइवर गिल्ट जिसे कहते हैं।
हाँ, सर्वाइवर गिल्ट। ये बहुत जटिल एहसास होता है। बचने वाले अक्सर सोचते हैं कि वो क्यों बच गए जबकि इतने सारे लोग मारे गए। क्या वो इसके लायक थे? इस बोझ के तले एडिथ ने दशकों तक अपने अनुभवों के बारे में बात नहीं की, एक चुप्पी साध ली। शरीर तो आजाद हो गया था, पर मन जैसे अब भी ऑशविट्ज़ की उन दीवारों के पीछे कैद था।
लेकिन फिर एक मोड़ आया 40 की उम्र के बाद।
हाँ, एक दोस्त ने उन्हें हिम्मत दी कि वो आगे पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं। सोचिए, उस उम्र में इतने अनुभवों के बाद ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा।
यकीनन।
और ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एल पासो में दाखिला लिया, 1969 में ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 1978 में क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।
फैक्ट्री वर्कर से डॉक्टर साइकोलॉजी, कमाल है।
ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उनके लिए खुद को समझने का, अपने जख्मों को भरने का एक जरिया था। एक तरह से वो खुद को ही बचा रही थी।
और फिर उन्होंने अपने इस दर्दनाक अनुभव को ही अपनी ताकत बना लिया।
बिल्कुल। उन्होंने विलियम ब्यूमॉन्ट आर्मी मेडिकल सेंटर में काम करना शुरू किया। वहां वो खास तौर पर उन सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करती थीं जो युद्ध के बाद के सदमे, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD से जूझ रहे थे।
क्योंकि वो खुद जानती थी कि यह दर्द कैसा होता है।
हाँ, वो उस दर्द को पहचानती थी। PTSD में होता क्या है कि किसी भयानक घटना के बाद भी इंसान लंबे समय तक उसके असर से बाहर नहीं आ पाता। वही डरावने सपने, वही यादें, घबराहट, वो ये सब महसूस कर सकती थीं।
लेकिन शायद उनका अपना सफर अभी अधूरा था। 1980s के दशक में उन्होंने एक और बहुत मुश्किल फैसला लिया, ऑशविट्ज़ वापस जाने का।
हाँ, अपनी बेटी के साथ। ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, ये उस जगह लौटना था जहां उन्होंने अपनी माँ को, अपने बचपन को खो दिया था। लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि जब तक वो खुद अपने अतीत की इस कैद से पूरी तरह आज़ाद नहीं होती, वो दूसरों की मदद भी पूरी तरह से नहीं कर सकती। तो ये सिर्फ यादें ताज़ा करना नहीं था, ये अपने अतीत का सामना करना था, उसे स्वीकार करना था और उससे अपनी शक्ति वापस लेनी थी। एक तरह से ये अपनी मन की जेल को तोड़ने जैसा था।
और उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा किया जो बहुत सिम्बॉलिक था।
हाँ, उन्होंने वहाँ उसी जगह पर अपनी मर्जी से नृत्य किया जहाँ सालों पहले उन्हें ज़बरदस्ती नाचने पर मजबूर किया गया था। ये मुक्ति का, आज़ादी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था।
और इन सब अनुभवों को समेटकर आखिरकार 90 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कहानी और अपनी सीख दुनिया के सामने रखी किताब द चॉइस।
जी, और वो किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी, आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ईगा आज भी 90 के पार होकर भी मरीजों को देखती हैं, लेक्चर देती हैं। उनकी ऊर्जा अद्भुत है।
उनकी जिंदगी ही अपने आप में एक संदेश है। चलिए अब थोड़ा उनके मूल दर्शन, उनके कोर वैल्यूज पर बात करते हैं। आपने कहा कि उनके दर्शन का केंद्र है विकल्प की शक्ति। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब ऑशविट्ज़ जैसी जगह पर सच में क्या विकल्प था?
ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब डॉक्टर ईगर विकल्प की बात करते हैं तो वो ये नहीं कह रही कि आप चुन सकते हैं कि आपके साथ क्या हो। जाहिर है, कोई नहीं चुनता कि उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा जाए।
सही।
लेकिन वो कहती हैं कि आप हमेशा हमेशा ये चुन सकते हैं कि आप उस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, प्रतिक्रिया कैसे देंगे। जैसे मेंगले के सामने नाचते हुए, शारीरिक रूप से वो पूरी तरह बेबस थीं, पर उन्होंने अपने मन को कहीं और ले जाने का चुनाव किया। उन्होंने बाहर की क्रूरता को अपने अंदर की दुनिया पर हावी नहीं होने दिया। ये विकल्प शायद बाहर से बहुत छोटा लगे, पर यही उनकी आंतरिक स्वतंत्रता, उनकी इनर फ्रीडम की बुनियाद बना। और ये सिर्फ ऑशविट्स जैसे बड़े सदमों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो निराशाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनमें भी ये चुनाव करने की ताकत कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ा सकती है।
और इसी से जुड़ा उनका एक और जरूरी विचार है, विक्टिमाइजेशन और विक्टिमहुड में फर्क, ये क्या है?
हाँ, ये बहुत अहम है। विक्टिमाइजेशन यानी शिकार बनना, ये एक घटना है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उसके शिकार बने, ये शायद आपके कंट्रोल में नहीं था।
ओके।
लेकिन विक्टिमहुड यानी पीड़ित बने रहना, ये एक मानसिकता है, एक एतदस्प्री है, एक चुनाव है। ये इस घटना के गुजर जाने के बाद भी खुद को लाचार बेबस महसूस करते रहना है। डॉक्टर ईगर जोर देती हैं कि हमें ये सवाल पूछना बंद करना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और ये पूछना शुरू करना होगा कि ठीक है, ये हुआ, अब क्या,
अब आगे क्या करना।
बिल्कुल, उस पीड़ित वाली पहचान से बाहर निकलना होगा और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी, यही आगे बढ़ने का रास्ता है।
तो इसका मतलब असली कैद बाहर के हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है, वो मन की जेल वाली बात।
हाँ बिल्कुल, वो इसे मन की जेल कहती हैं। हमारे अनसुलझे दुख, हमारे डर, हमारी वो सोच कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, ये सब हमारे दिमाग में दीवारें बना देते हैं। हम भले ही बाहर से आजाद हों, पर अंदर से कैदी बने रह सकते हैं।
तो इस जेल से बाहर कैसे निकलें? क्या बस वक्त बीतने से सब ठीक हो जाता है?
नहीं, डॉक्टर ईगर का एक बहुत मशहूर कोट है, समय घाव नहीं भरता, आप समय के साथ क्या करते हैं वो मायने रखता है।
अच्छा,
मतलब हीलिंग या उपचार कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है कि बस इंतजार करो और सब ठीक हो जाएगा। ये एक एक्टिव काम है जिसमें हिम्मत चाहिए। इसमें अपनी मुश्किल भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो, उन्हें महसूस करने का साहस चाहिए। उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, जी भरकर शोक मनाना और फिर धीरे धीरे अतीत को जाने देना, ये आसान नहीं है पर बहुत जरूरी है।
इस मुश्किल रास्ते पर चलने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, क्या वजह थी?
कई वजह थी। एक तो जैसा हमने पहले बात की, मनोविज्ञान पढ़ना उनके लिए एक तरह से खुद को बचाने, खुद को समझने का तरीका था,
सेल्फ हीलिंग।
हाँ, सेल्फ हीलिंग। दूसरा, वो उन लाखों लोगों को सम्मान देना चाहती थी जो हॉलोकॉस्ट में नहीं बच पाए। उन्हें लगता था कि उन लोगों के अधूरे जीवन के बदले एक सार्थक, मीनिंगफुल जीवन जीना उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, वो अपने जख्मों को, अपने निशानों को शर्मिंदगी या कमजोरी नहीं मानती थी, वो उन्हें एक क्वालिफिकेशन, एक योग्यता मानती थी। उनका मानना था कि उनके कष्टों ने उन्हें दूसरों के दर्द को ज्यादा गहराई से समझने और उनकी मदद करने की एक अनोखी क्षमता दी है।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी काफी अलग है। वो साहसिक जुड़ाव और संज्ञानात्मक पुनर्रचना जैसी चीजों की बात करती हैं। थोड़ा समझाएंगी?
जरूर। साहसिक जुड़ाव यानी करेजस एंगेजमेंट, इसका मतलब है कि जब मुश्किल भावनाएं उठें, गुस्सा, डर, उदासी, तो उनसे डर कर भागे नहीं, हिम्मत करके उनका सामना करें, उन्हें महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें।
और संज्ञानात्मक पुनर्रचना, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग।
हाँ, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी बुरे अनुभव को देखने का अपना नजरिया बदलना, ये सोचना बंद करना कि हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, और ये सोचना शुरू करना कि ठीक है, ये मुश्किल था, पर मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या मैं इस अनुभव का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कैसे कर सकता हूँ।
मतलब पर्सपेक्टिव बदलना।
बिल्कुल, दर्द को एक सजा की तरह देखने के बजाय उसे सीखने के एक मौके की तरह देखना। और आखिर में कर्म, यानी सिर्फ सोचते ना है ना, बल्कि जिम्मेदारी लेकर छोटे छोटे ठोस कदम उठाना जो आपको बेहतर महसूस कराए, जो आपको जीवन की ओर ले जाए। डॉक्टर ईगर कहती हैं कि हर घाव में एक उपहार छिपा होता है, बस हमें उसे खोजने की नजर चाहिए।
चलिए अब उन तीन सबसे अहम पलों पर आते हैं जिन्होंने डॉक्टर ईगर की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहला तो शायद वही था, मेंगले के लिए किया गया वो नृत्य।
हाँ निश्चित रूप से, 1944 में माँ की मौत के चंद घंटों बाद, सिर्फ 16 साल की उम्र में उस जल्लाद डॉक्टर के हुक्म पर नाचना, ये पल इतना निर्णायक इसलिए था क्योंकि उस चरम बेबसी और अमानवीकरण के क्षण में, जब लग रहा था कि सब कुछ छिन गया है, उन्होंने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को खोजा। उन्हें पहली बार ये गहरा एहसास हुआ कि उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी अपनी है, उस पर कोई बाहरी ताकत कब्जा नहीं कर सकती। ये उनकी चुनाव की शक्ति का पहला सबसे शक्तिशाली अनुभव था। इसने उनके अंदर उम्मीद की वो छोटी सी चिंगारी जलाए रखी जो उन्हें आगे ले गई।
दूसरा है मोड़, आपने बताया था 1945 में लाशों के ढेर से उनका बचाया जाना।
हाँ, गुंसकिर्चन लेगर में जब वो लगभग मर चुकी थीं और एक अमेरिकी सैनिक ने उनके हाथ की जरा सी हरकत देखकर उन्हें बचा लिया। ये सचमुच एक पुनर्जन्म था।
बिल्कुल।
इसने उन्हें जीवन कितना नाजुक है और हमारा होना या न होना कितना आकस्मिक हो सकता है, इसका बहुत गहरा एहसास कराया। लेकिन इसके साथ ही वो गहरे जख्म भी आए, खासकर वो सर्वाइवर गिल्ट वाला सवाल, मैं क्यों बच गई, मैं क्यों। इस अनुभव ने उन्हें अपनी जीवन का मकसद ढूंढने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया। ये सवाल उन्हें सालों तक परेशान करता रहा।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, वो था 80 के दशक में उनका ऑशविट्स वापस जाना।
सही, तब तक वो एक जानी मानी अनुभवी मनोवैज्ञानिक बन चुकी थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि वो अपने मरीजों की पूरी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक वो खुद अपने अतीत के इस भारी बोझ से पूरी तरह आजाद ना हो जाएं।
खुद को हील करना जरूरी था।
बिल्कुल। तो ऑशविट्स लौटना सिर्फ एक जगह वापस जाना नहीं था, ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम था अपनी अतीत की उस डरी हुई पीड़ित लड़की से मिलने का, उसे समझने का और उसे आज की अपनी मजबूत सक्षम पहचान के साथ जोड़ने का। ये सामना करने और अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने जैसा था। इस यात्रा ने सचमुच उनकी मन की जेल के ताले खोले और इसके बाद उनके काम में, उनकी बातों में एक नई गहराई, एक नई प्रामाणिकता और सहानुभूति आई।
डॉक्टर, ईगर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती, इसमें हम सबके लिए कितने गहरे सबक छिपे हैं, है ना?
हाँ, निश्चित रूप से। यह हमें दिखाती है कि भयानक से भयानक दुख और सदमे को भी ताकत में, ज्ञान में बदला जा सकता है। ये कोई आसान बात नहीं है, पर यह संभव है।
और ये हमारे मन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है।
बिल्कुल, कि भारी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, हमारे पास हमेशा अपना नजरिया, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आंतरिक स्वतंत्रता होती है। ये आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता।
और ये बहुत उम्मीद देती है कि गहरे से गहरे जख्म भी भर सकते हैं, इंसान बदल सकता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। ये कभी हार ना मानने वाली जो इंसानी रूह है, उसका सबूत है।
हाँ, और ये विक्टर फ्रेंकल जैसे लोगों की बातों को सच साबित करती है कि दुख और पीड़ा में भी अर्थ और उद्देश्य ढूंढना मुमकिन है और शायद जरूरी भी है। यही चीज हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
साथ ही रिश्तों का महत्व भी समझ आता है।
बहुत ज्यादा। उनकी बहन मैग्डा और बाद में उनके पति बेला, इन रिश्तों ने उन्हें उस मुश्किल सफर में बहुत सहारा दिया। अकेले शायद ये लड़ाई और भी मुश्किल होती। दूसरों का साथ, उनका प्यार बहुत मायने रखता है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले, एक भावनात्मक स्तर पर क्या सीख मिलती है?
भावनात्मक स्तर पर मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे सबसे गहरे जख्म, हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां, जिन्हें हम अक्सर छिपाना चाहते हैं, वही असल में हमारे ज्ञान, हमारी करुणा और हमारे ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन सकते हैं। इस विरोधाभास में, इस पैराडॉक्स में एक गहरी उम्मीद छिपी है।
ये बहुत गहरी बात है। और अगर एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि की बात करें तो?
बौद्धिक रूप से डॉक्टर ईगर का ये जो चुनाव की शक्ति वाला फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला फलसफा नहीं है। ये असल में जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल, शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। यह हमें निराशा और लाचारी के गड्ढे से निकालकर सक्रियता और समाधान की तरफ ले जाता है। यह हमारी मेंटल एनर्जी को सही दिशा देता है, बजाय इसके कि हम क्यों हुआ में अटके रहें।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब पर लागू होता है।
सार्वभौमिक सत्य शायद यही है कि असली स्वतंत्रता, सच्ची आजादी बाहर की परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अंदरूनी स्थिति पर। हमारी आखिरी और सबसे अहम आजादी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में है, और ये चीज लचीलेपन को, रिजिलियंस को, कोई जादुई गुण नहीं बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर बनाती है जो हम सबके लिए मुमकिन है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।